निर्गमन 20:8-10 पद। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए दूसरा, आपको अपने शरीर और हृदय को पवित्र करना है। कितनी बार परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आपको आशीष देंगे अगर आप सबत के दिन को पवित्र रखेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इसे आशीष दिन कहा है। सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए तीसरा, आपको पूरी तरीके से संपूर्ण दिन को अर्पण करना है। आपको रविवार की सुबह की सभा और शाम की सभा में भाग लेना है। प्रभु के दिन को पूरी तरीके से पवित्र रखने के लिए आपको सुबह और शाम की सभा में भाग लेना है, और आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। यशाया 56:2 में कहा गया है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। होने पाए आप अपने शरीर और मन को साफ करने पाए, संपूर्ण प्रभु के दिन को पवित्र रखने के द्वारा और प्रभु के आशीषित संतान बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह सबत के दिन को पवित्र रखने की श्रृंखला में तीसरा सत्र है। इस संदेश में पिछले संदेश से लगातार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सबत के दिन को पवित्र रखें। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सांसारिक काम ना करें, लेकिन कलीसिया की सभा में भाग लें और परमेश्वर की आराधना करें प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि सबत का दिन परमेश्वर को महिमा देने का दिन है और आत्मिक तौर से विश्राम का दिन। लेकिन जिस तरीके से संसार बदल रहा है, बहुत से लोगों को चिंता होती है क्योंकि उन्हें रविवार के दिन भी काम करना पड़ता है। अगर आप सचमुच में प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं, तो हर एक परिस्थितियों में प्रेमी परमेश्वर आपके हृदय को ग्रहण करेंगे और आपके लिए रास्ता खोलने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आप सबत के दिन को पवित्र मान सके। अगर आप अपनी बेहतर कोशिश करें कि आप अपनी दी गई परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करें और विश्वास का परिणाम, तो परमेश्वर आपको यह नहीं कहेंगे कि आपने सबत के दिन का उल्लंघन किया है। लेकिन सचमुच में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप विश्वास में बढ़ें और अपनी दी गई परिस्थितियों पर आप विजय पाएं। उदाहरण के लिए डैनियल और उसके 3 मित्रों के संबंध में, उनको दूसरे देश में निकाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को माना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, यहाँ तक कि खाने के बारे में भी, क्योंकि वो सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर से प्रेम करते थे। इसलिए इस तरीके की परिस्थितियां उनसे कोई संबंध नहीं रखती थी। लेकिन आज के दिनों में जब संसार बहुत ज्यादा बदल गया है और लोगों के पास अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग विश्वास का परिणाम होता है, इसलिए प्रेमी परमेश्वर कुछ खास मामलों को स्वीकारते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि इस तरीके का न्याय केवल तभी लागू होता है जब आपके हृदय में यह इच्छा होती है कि आप कभी भी सबत के दिन का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आप इस संदेश को गलत समझते हैं और सबत के दिन का उल्लंघन करता है, तो हो सकता है कि यह आपके लिए श्राप बने। जनरल नामान, वो एक गैर यहूदी था, लेकिन वो अपने कोट के रोग से चंगा हुआ क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया। जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगा हुआ, अपने देश जाने से पहले उसने एलिशा से पूछा। दूसरा राजा 5:17-18 पद कहता है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात तो यह हुआ, तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यह हुआ तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। ना मान ने निर्णय लिया कि वो केवल परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। जिस तरीके से वो अपने कोढ़ के रोग के द्वारा चंगे हो गए थे, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए इस तरीके का निर्णय लेना कोई आसान बात नहीं है। उनका लालसा भरा हृदय बहुत ज्यादा उत्सुक था, यहाँ तक कि उन्होंने इसराइल की मिट्टी को भी ले लिया ताकि वो उसका प्रयोग परमेश्वर की आराधना करने में कर सके। जब वह आराम के राजा का विश्वास योग्य व्यक्ति था तो उसे रिमोन के घर जाना था, दूसरे शब्दों में एक गैर यहूदी परमेश्वर के घर में। इस समय जो वहां का राजा था वो नामान के सामने झुकता, इसीलिए नामान को भी उसके साथ झुकना था। उसे इस मामले की चिंता थी। नामान परमेश्वर के सामने दोष रहित रहना चाहते थे, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर यह आसान बात नहीं थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर से दया के लिए मांगा। परमेश्वर ने नामान को चंगा किया क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि वो ऐसे हृदय के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। उन दिनों में यहाँ तक कि इसराइल के लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग कोढ़ी थे, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। लेकिन एक गैर यहूदी जिसने परमेश्वर की सेवा नहीं की वो चंगा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने कार्य किया क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि उसका हृदय अच्छा है और ईमानदार है, और जब वह सत्य को जानेगा तो वो सत्य के अनुसार चलेगा। आप में से जो कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है, आप सभी इसी श्रेणी में आते हैं। आपके हृदय में समस्या है। मैं आशा करता हूं कि आप भी एक अच्छे हृदय की सुगंध को अर्पित करेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हैं। तब परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेंगे ताकि आप प्रभु के दिन को पवित्र मान सकें आपकी परिस्थितियों और आपके विश्वास के अनुसार, और अंत में वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप एक अच्छे स्थिर विश्वास में पहुंचे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आशीषों को पाने के लिए अगुवाई हो और परमेश्वर के द्वारा प्रेम हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सब्बत के दिन को पवित्र रखने के लिए दूसरा, आपको अपने शरीर और अपने हृदय को पवित्र करना है। प्रभु का दिन वो दिन है जब हम परमेश्वर और प्रभु के सामने, प्रभु जो हमारे दूल्हे हम उनके सामने आते हैं। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और सब्बत का दिन अलग किया गया और पवित्र किया गया, इसीलिए आप उन आशीषों का आनंद ले सकते हैं जो सब्बत के दिन दी जाती हैं, जब आप अपने पवित्र हृदय और शरीर के साथ पवित्र मानते हैं। आप में से बहुत सारे पहले ही सीख चुके हैं इसे, और आप कलीसिया में आते हैं अपने पवित्र शरीर और हृदय के द्वारा। प्रभु के दिन से पहले दिन शनिवार को आप अपने घर को साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, और आप नहाते हैं, और या फिर आप बाल कटाते हैं ताकि आप सब्बत के दिन के लिए तैयारी कर सकें। आप अपने साफ कपड़े भी तैयार करते हैं जो आप रविवार के दिन पहनेंगे, और जब आप अपने वातावरण और अपने रूप को साफ करते हैं तो आपका मन भी तरोताजा हो जाएगा। यहूदी वो सब्बत के दिन से पहले वाले दिन को तैयारी के दिन के रूप में मानते थे, यहाँ तक कि अगर वो कहीं यात्रा करने गए हैं वो वापस घर आ जाते थे ताकि वो तैयारी कर सके और सब्बत के दिन को पवित्र मान सके। आपको उनके व्यवहार और उनके हृदय को ग्रहण करने की जरूरत है ताकि आप सब्बत के दिन को अपने जीवन का बिंदु मान सके। अगर आप सब्बत के दिन की ओर देखते हैं तो आप उसकी तैयारी करेंगे, और यहाँ तक कि आप उन भेंटों को भी तैयार करेंगे जो आप परमेश्वर को देंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपना वातावरण और शरीर को साफ करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने हृदय को साफ करें। इसीलिए सब्बत के दिन आपको किसी भी संसार के काम में भाग नहीं लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं जो विश्वास के साथ सब्बत के दिन को पवित्र मानेंगे वो टीवी पर कार्यक्रमों को देखने का आनंद नहीं लेंगे, और यहाँ तक कि आप इस संसार का आनंद लेने के लिए जैसे कि गेम्स को देखना, और यहाँ तक कि फिल्में देखना, और यहाँ तक कि पिकनिक पर जाना, आप उनका आनंद नहीं लेंगे। प्रभु का दिन वो दिन है जिसमें हम अपने जीवन की रोटी लेते हैं और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं और विश्वासों के साथ बातचीत करते हैं और आत्मिक रूप से विश्राम करते हैं। अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं उसको नियंत्रित करें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सब्बत के दिन को परमेश्वर के भवन में बिताएं, और यह आपके लिए अच्छा होगा कि हम अपने आसपास के वातावरण को आत्मिक बनाएं। और आपको ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सांसारिक आनंद के साथ संपर्क हो सके, यहां तक कि जब आप नहीं चाहते। कुछ नए विश्वासी जिनका विश्वास कमजोर है वो कह सकते हैं कि यह क्या मजाक है कि हम अपना पूरा छुट्टी का दिन चर्च में बिताएं बिना किसी आनंद को लिए हुए। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप किसी संसार का आनंद लें, क्या आपके पास सच्चा आनंद होगा? हो सकता है कि आपको कुछ क्षणों के लिए खुशी मिले और आप सोचते हैं कि आपको विश्राम मिला है, लेकिन वो केवल क्षण भर का ही आनंद होगा और वो जल्दी ही मिट जाएगा और वो आपकी चिंताओं को और समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। और हो सकता है कि आप संसार के आनंद में पड़ जाएं और यहां तक कि जो आपके जीवन का भी नाश कर दे, लेकिन वो आनंद जो आप प्रभु में लेते हैं वो ही सच्चा विश्राम है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। यशायाह 58 अध्याय 13-14 पद कहता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। कितनी बार परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमें आशीष देंगे जब हम प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे। परमेश्वर यह कह रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर इसे एक आशीषित दिन कहते हैं। मैंने प्रभु के दिन को पूरी तरीके से पवित्र रखा। जैसे मैं एक नया विश्वासी था, प्रभु के दिन को पवित्र रखना उनके वचनों के अनुसार यह मेरे लिए आनंद था। मैंने एक अच्छी आदत बनाई और यह बहुत अच्छा था। उदाहरण के लिए, मैंने सभी चीजें पहले से ही प्रभु के दिन के लिए तैयार की। मैंने शनिवार को अपने सूट को और अपनी टाई को तैयार किया जो मुझे रविवार के दिन पहननी थी। इसी तरीके से नीचे पहनने वाले कपड़े और जुराबों को भी। और जब मैं रविवार के दिन उठता था, मैं नहाता था और मैं साफ कपड़े पहनता था जो मैंने शनिवार के दिन को तैयार किए थे। मैंने कभी भी इसे नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी वही कपड़े रविवार के दिन नहीं पहने जो मैंने शनिवार के दिन पहने थे। जिस क्षण मैंने इसे जाना कि मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहिए, मैंने उस आदत को बनाया और मैंने इसे पूरी तरीके से रखा। इस तरीके से ये मेरी आदत बनी और फिर ये मेरे व्यवहार में आई। अगर आप प्रभु के दिन को पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद देता है जो यह संसार नहीं दे सकता। आपको उस आनंद को महसूस करना चाहिए प्रभु के दिन, और यह आपके लिए अच्छा होगा जब आप कलीसिया में आएंगे और जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और जब आप स्तुति और आराधना करेंगे, तो फिर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर से प्रेम करेंगे। ये सभी चीजें अपने हृदय के साथ करनी चाहिए। मेरे लिए केवल रविवार का दिन ही प्रभु का दिन नहीं था, हर दिन मेरे लिए प्रभु का दिन है। जब से मैं आनंदित था अपने हृदय में हर समय, और मैं उमड़ती हुई खुशी के साथ भरा था और धन्यवाद के साथ। इसीलिए हर दिन मेरे लिए प्रभु का दिन होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दर्द, अकेलेपन और उदासी से घिरे हुए हैं। क्या यह उन पर निर्भर नहीं है कि वो किस तरीके से अपने हृदय को नियंत्रित करते हैं? इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को दूर करें। जब आप पहले इन्हें दूर करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं और बिना रुके प्रार्थना कर सकते हैं और हर एक स्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि क्या करें। जिस हद तक आप संसार के चीजों को दूर करते हैं, परमेश्वर आपके हृदय में आनंद देते हैं। वो आनंद जो आप संसार की चीजों से लेते हैं वो कुछ ही पलों का है, लेकिन जब आप इसे दूर करते हैं तो सच्चा आनंद स्वर की ओर से आता है। वो सच्चा आनंद और खुशी आपके हृदय में आती है और कोई भी उसे आपसे दूर नहीं कर सकता। मैं इसका गवाह हूं, इस सच्चे आनंद, खुशी और धन्यवाद का। और कोई मायने नहीं रखता कि किस तरीके की परीक्षाएं मेरे सामने आए, और कोई मायने नहीं रखता कि ये कितनी भी मुश्किल हो, कोई भी मेरे उस आनंद और धन्यवाद को मेरे हृदय से नहीं छीन सकता। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी उसको पाएंगे। अगर आप मेरे जीने के तरीकों का अनुसरण करना चाहे तो हो सकता है कि ये कुछ हद तक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, भाइयों और बहनों। निश्चित तौर से मैं आपके साथ खाना खा सकता हूं, मैं आपके साथ आनंदित होकर बातचीत कर सकता हूं, लेकिन मैं उन सबको छोड़ देता हूं क्योंकि मैं उन सभी विचारों के साथ भरा हुआ हूं, जैसे कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ आत्मा के उच्च स्तर में जाऊं, किस तरीके से और ज्यादा महान सामर्थ्य को पाऊं कि हम संसार को जगा सके, किस तरीके से लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊं और किस तरीके से लोगों को बताऊं कि बाइबल ही सत्य है, किस तरह परमेश्वर के नाम को महिमा दूं और किस तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊं, किस तरह केवल एक और आत्मा को और चंगाई दूं। यह ऐसा नहीं है कि मैं उनको चंगाई नहीं दे सकता। अगर आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो चंगी नहीं हो सकती। मेरा हृदय ऐसे विचारों के साथ भरा हुआ है कि किस तरीके से लोगों को सिखाऊं कि वो पाप ना करें। मेरे हृदय में परमेश्वर का राज्य है और यहां तक कि जब मैं अकेला होता हूं मैं खुश होता हूं। मैं अपना सारा समय अपने कमरे में अकेले बिताता हूं और मैं खुश होता हूं। मैं किसी और चीजों के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मैं अपना समय बचाना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर को दे सकूं। मैं किसी और चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगा सकता। जिस तरीके से प्रभु के वापस आने के दिन पास आते जा रहे हैं, मैं और ज्यादा समय को बचाना चाहता हूं। किस तरीके से और ज्यादा समय परमेश्वर को दूं और किस तरीके से और ज्यादा परमेश्वर के लिए काम कर सकूं, मैं हमेशा इन चीजों के बारे में सोचता हूं। हर दिन मेरे लिए सबत का दिन होता है, यहां तक कि मैं आपको आमने सामने नहीं देखता, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैंने आपको देखा है हमेशा। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। अगर आप भी हमेशा केवल स्वर्ग और यरूशलेम के बारे में सोचें तो आपका सारा का सारा ध्यान केवल स्वर्ग के राज्य की ओर रहेगा। तब आपके हृदय में सच्चा आनंद और खुशी होगी, और ज्यादा खुशी आपके हृदय में आएगी। हर दिन आपके लिए अच्छा होगा, मुश्किलें वो चली जाएंगी, बस यही एक समस्या है। जब आप प्रभु के दिन को पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद देता है जो यह संसार नहीं दे सकता। जब आप सब्बत के दिन परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके आत्मा की समस्याओं को सुलझा देते हैं। वो आपके जीवन को आशीषित करते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन सच्चा विश्राम पा सकता है केवल तब जब परमेश्वर हमारे जीवन, स्वास्थ्य, बच्चे और हमारे कार्यों की जिम्मेवारी लेते हैं। जब आप सब्बत के दिन को पवित्र रखते हैं तो आपके पास सच्चा आनंद होगा और आपके पुनरुत्थान की आशा बढ़ जाएगी और आपके पास स्वर्ग के राज्य की आशा होगी। मैं आशा करता हूं कि जो नए विश्वासी हैं वो भी इस आनंद का अनुभव करेंगे। पवित्र हृदय के साथ सब्बत के दिन को पवित्र मानने के लिए आपको अपने हृदय से कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। यशायाह 1:13 कहता है, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहते हैं वो उन बुरे लोगों को नहीं सह सकते जो बुराई करते हैं, यहां तक कि वो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं और परमेश्वर के लोग कहते हैं। मैं इसे नहीं समझ पाता। जब इस कलीसिया के लोग पाप करते हैं तो यह मुझे बहुत मुश्किल बनाता है। जब मुझे ये पता चलता है कि वो लोग पाप कर रहे हैं तो यह सहना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उनके लिए बहुत क्षमा महसूस करता हूँ और मेरे लिए हमेशा उनके लिए चिंता मेरे हृदय में होती है, क्या होगा अगर वो नरक चले जाएंगे, क्या होगा अगर उनका मसीह जीवन बेकार हो जाएगा। ये मेरे लिए हमेशा शोक का कारण बनता है। वो जो अभी तक नहीं बदले समय के गुजरते हुए, वो जिनका हृदय अभी नहीं बदला, हालांकि जब भी मैं उनसे मिला मैं उन्हें देखकर हमेशा खुश हुआ, मेरा हृदय उनके लिए हमेशा जलता रहता है। क्यों वो अपने समय को व्यर्थ में बिता रहे हैं? कितने ज्यादा वो खुश होंगे अगर वो मेहनत से बदल जाएंगे और आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएंगे। वो बहुत तरह से आशीषें पाएंगे और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे और यरूशलेम के पास आएंगे। क्या होगा अगर मैं संपूर्ण आत्मा में आ जाऊंगा, उससे अगला क्या है? तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक कि उन गहराई की बातों को। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि हर एक चीजों को किस तरीके से कुछ नहीं में बदले जब हम संपूर्ण आत्मा में आ जाते हैं और एक नई आत्मा में आए। मैंने आपको बताया है कि कोई भी अंत नहीं है इस आत्मिक क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ क्या होगा अगर इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए यह अच्छा है कि हम लगातार चलते जाएं, ठीक? हो सकता है कि आप आराधना सभाओं में भाग ले या फिर किसी पवित्र सभाओं में भाग ले। अगर आपके पास झगड़ा होता है या आप गुस्सा करते हैं तो यह परमेश्वर को दुख देता है, और यहाँ तक कि आप सबत के दिन को टूटे हृदय के साथ देते हैं क्योंकि संसार की चिंताओं के कारण, तो फिर परमेश्वर आपकी आराधना को खुशी से ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए आपको खुशी के साथ और धन्यवाद के साथ सबत के दिन को पवित्र मानना है। यहाँ तक कि आप किसी मुश्किल परिस्थितियों में हैं, उस स्थिति में भी आपको खुश रहना है और धन्यवाद देना है विश्वास के द्वारा। कितना ज्यादा धन्यवादी और आप आनंदित होंगे यह सोचकर कि आप बचाए गए हैं। तब परमेश्वर आपके लिए हर एक असंभव चीजों को संभव और हर एक परिस्थितियों को बदल देंगे। निश्चित तौर से एक सच्चा मसीह जो आत्मा से भरा है उसे हमेशा आनंद और धन्यवाद के साथ हर दिन भरे रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने शरीर और मन में पवित्र होकर प्रभु के दिन को पवित्र रखेंगे और सच्चा आनंद और खुशी स्वर्ग के राज्य में महसूस करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए तीसरा, आपको संपूर्ण दिन को अर्पण करना है। आपको सुबह की सभा और शाम की सभा में भाग लेना है। कुछ लोग केवल सुबह की सभा में भाग लेते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं और कार्य करते हैं या किसी पिकनिक पर चले जाते हैं। वास्तव में उनको अपनी दुकानों को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो फिर भी खोलते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके, या वो इस संसार का आनंद लेने के लिए चले जाते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप सब्बत के दिन को आधा मानते हैं, और यहाँ तक कि ये ऐसा भी नहीं है कि आप आधा मानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं कि संसार का आनंद नहीं लेना, कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं बेचना। यहाँ तक कि वो परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि वो उन चीजों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें परमेश्वर पुराने और नए नियम में निषेध करते हैं। वो सबत के दिन का उल्लंघन करते हैं और तब वो कहते हैं कि उन्होंने आधा सबत का दिन पवित्र रखा है। ये कितनी मूर्खता है। हम नहीं कह सकते कि यह पूरा है जब आप उन चीजों को करते हैं जिन्हें आपको मना किया जाता है, यहाँ तक कि आप प्रभु के दिन का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तक कि यहूदी आज भी सब्बत के दिन को बड़ी कठोरता के साथ मानते हैं। ज्यादातर वो वास्तव में अपने घर पे रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे सप्ताह अगर वो अपने घर से बाहर हो तो शुक्रवार तक अपने घर आ जाते हैं ताकि वो सबत के दिन को पवित्र मान सके। वो अपने घर वापस आ जाते हैं दिन छिपने से पहले। उनको ऐसा करना चाहिए और वो वास्तव में वैसा ही करते हैं। वो पूरे सबत के दिन को शुक्रवार को सूरज ढलने से लेकर शनिवार को सूरज ढलने तक मानते हैं। यहाँ तक कि जब हम सबत के दिन का पूरा मतलब जानते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपको किस तरह रखना चाहिए। अगर आप केवल सुबह की सभा में भाग लेते हैं या फिर केवल शाम को भाग लेते हैं और अपने कामों का आनंद लेते हैं, तो आप पूरे सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते। हो सकता है कि कोई ऐसा सोचे कि शाम की सभा के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। यहां तक कि आप दोनों सभाओं में भाग लें, हम नहीं कह सकते कि आपने संपूर्ण दिन प्रभु को दिया है, जब तक आप अपना बचा हुआ दिन पवित्र हृदय के साथ ना अर्पण करें। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको कार्य करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए सभा के बाद, तो हो सकता है कि आप सभा के दौरान ऊंघे या फिर सो जाएं। इसीलिए प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए आपको रविवार की सुबह की सभा और शाम की सभा में भाग लेना चाहिए और आपको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। क्या होगा अगर आप उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर रविवार के दिन उन कामों को मना करते हैं? अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सबत के दिन का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या होगा अगर आप सभा के समय में सो जाएं और दिन में सपने देखें? इसका मतलब है कि आपने वास्तव में परमेश्वर की आराधना नहीं की। हम नहीं कह सकते कि आपने सबत के दिन को पवित्र रखा है। अगर आप ऊंघे परमेश्वर के भवन में या आपके पास कुछ और विचार हो और अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, तो आप कैसे कह सकते कि मैंने प्रभु के दिन को पवित्र रखा है? आप आसमान की ओर नहीं देखते क्योंकि आप दोषी महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से बात करते समय सो जाएं या फिर ऊंघे, क्या यह एक अभद्र व्यवहार नहीं है? अगर आप ऐसा परमेश्वर के सामने करेंगे, यह सचमुच में बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार है। यह आपके लिए सचमुच में पछताना होगा अगर आप आत्मा से परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं करते, क्योंकि इसके बजाय आप घर पर रह सकते थे और आराम कर सकते थे। जब आप एक बार कलीसिया में होते और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो आपको हर एक आशीषों को पाना चाहिए जो आपको सबत के दिन मिलती है, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। निश्चित तौर से, यहां तक कि अगर आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते, तो यह अच्छा होगा कि आप कलीसिया में ना आए और सबत के दिन का उल्लंघन करें। तो यहाँ पर आइए सोचें कि किस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पहला, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें लेट नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 10 या 20 मिनट पहले सभा में आना चाहिए ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। जब एक बार सभा शुरू हो जाती है, आपको हर एक कार्यक्रमों में भाग लेना है जब तक वह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा या फिर आशीर्वाद वचन के द्वारा समाप्त नहीं हो जाती। आपको बीच में अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर से यह उनसे अलग हटके है जो स्वयं सेवी होकर अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें किसी कारण से अपनी सीटों को छोड़ना पड़ता है, जैसे कि लोगों को गिनना या फिर लोगों की अगुवाई करने के लिए। वह ऐसा करते हैं क्योंकि यह उनका कार्य है, इसलिए आपको उनको समझना चाहिए। जो भी है, चाहे किस तरीके के कार्य आपको दिए गए हैं, आपको आशीर्वाद वचन को लेना चाहिए। और यह भी कि आपको वचनों पर ध्यान देना है बिना किसी सपनों के और बिना ऊंघे हुए। आपको प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करनी चाहिए और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आपको अपने हृदय को उन शब्दों में देना है। और आपको परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आपको कुछ भेंटों को तैयार करना चाहिए पहले से ही और फिर वो आनंद के साथ परमेश्वर को देना चाहिए। अगर आपके पास साफ रूप है तो हो सकता है कि आप और ज्यादा अच्छी सुगंध परमेश्वर को दे सके। उदाहरण के लिए, सभा के समय परमेश्वर के सामने आपको अपने सिर से टोपी को उतारना चाहिए। निश्चित तौर से ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने सिर पर टोपी रखता है, लेकिन कुछ लोग अपने सिर पर कुछ रखते हैं। हो सकता है कि कोई मेडिकल कारण हो, लेकिन कुछ लोग अपने शरीर के किसी भाग को ढकने के लिए उसे पहनते हैं। आपको उन लोगों को समझना चाहिए। बस सोचे, ओ उसने टोपी को पहन रखा है, कोई ना कोई कारण होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्यों उसने उस टोपी को पहना है। आपको उसका न्याय नहीं करना चाहिए, आपको भलाई में सोचना है। और यह भी, परमेश्वर और ज्यादा खुश होंगे अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे कि स्वर्ग के राजे की तरह, और जो परमेश्वर को और ज्यादा खुश करते हैं। एक चीज जो आपको सोचना है वो यह है कि आपको परमेश्वर के भवन को बहुत कीमती समझना है। लेवे व्यवस्था 26 अध्याय उसका 2 पद कहता है, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का भवन बहुत पवित्र स्थान है। बाइबल में आप इसे देख सकते हैं कि इसराइल के लोगों ने इसे एक शिष्टाचार कहा, जिस तरीके से आज हम परमेश्वर का भवन कहते हैं। परमेश्वर का भवन परमेश्वर का पवित्र स्थान है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर रहते हैं। इसलिए आपको भवन में हमेशा आपको सावधान रहना है, यहां तक कि अपने थोड़े से भी कार्य और अपने शब्दों के बारे में। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि अच्छा नहीं है, और यहां तक कि सांसारिक बातें भी। नए नियम में और पुराने नियम में यह कहा गया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए परमेश्वर के भवन में। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो परमेश्वर के भवन में खेले नहीं और ना ही भागे। और यह भी कि आपको भवन को हमेशा साफ रखना है। आप में से बहुत से विश्वासी परमेश्वर के भवन से प्रेम करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। आप में से बहुत सतर्क होते हैं कि यहाँ तक कि कोई भी धूल या कोई भी एक भी बाल भवन में ना हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप कुछ भी भवन में नहीं खाएंगे। आप नर्सरी रूम में जाकर अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा सकते हैं उन्हें कुछ देकर। आपको अपने रोते हुए बच्चे को कुछ देकर उन्हें चुप कराना है। छोटे बच्चे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो रोते हैं जब उन्हें कुछ चाहता है। उन्हें चुप कराने के लिए हम कुछ स्नैक्स दे सकते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने अपने बच्चे को स्नैक्स दिया है परमेश्वर के भवन में। लेकिन परमेश्वर के भवन में हमें वहां पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मुख्य तौर से आराधना सभा के दौरान हमें यह अधिकार नहीं है कि हम कुछ भी खाएं और पिए परमेश्वर की आराधना करते समय। कृपया करके आप डाइनिंग क्षेत्र में जाकर वहां जाकर खाना खा सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के भवन को साफ रख सकें। आप में से कुछ अपने मोबाइल फोन को ऑन रखते हैं और उसे वाइब्रेशन पे रखते हैं, और जब कोई संदेश आता है आप उसे पढ़ते हैं और उसका उत्तर भेजते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना नहीं है। आपको किसी के फोन का या फिर किसी के व्यवसाय का इंतजार नहीं करना चाहिए सभा के दौरान। और यहाँ तक कि आपको उन सभी चीजों का और उन सामानों का ध्यान रखना है जो परमेश्वर के भवन में है। हर एक चीज जो परमेश्वर के भवन में है वो परमेश्वर की है और वो पवित्र है। मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया है। कोई मायने नहीं रखता कि क्या है। जो भी सामग्री परमेश्वर के भवन में है वो परमेश्वर से संबंधित है, और आपको उनका प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के भवन में से कुछ लेते हैं तो पहले आपको उसकी अनुमति लेनी चाहिए। आपको ऐसे ही अपने आप नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के भवन का ध्यान रखेंगे और ज्यादा। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे अपने पूरे हृदय के साथ, और ऐसा हृदय ऐसा है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। हम जल्दी ही कनान सेंचुरी में जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसा उदाहरण स्थापित करें ताकि जो भी कोई परमेश्वर के भवन को देखे वो परमेश्वर की उपस्थिति को और स्वर्ग के राज्य को देख सके। जितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उतना ही ज्यादा परमेश्वर से डरेंगे। अगर कहें आप परमेश्वर पर 100% भरोसा करते हैं और परमेश्वर आप पर 100% भरोसा करते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि जब मैं परमेश्वर पर 100% भरोसा करता हूँ, और जब परमेश्वर मुझ पर 100% भरोसा करते हैं, और मैं हर किसी से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम पाता हूँ, तो मैं इन चीजों को कर सकता हूँ? क्या आप कह सकते हैं? नहीं। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप कम से कम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, और यह परमेश्वर का प्रेम है कि आपको परमेश्वर के सामने सभ्य नहीं बनना चाहिए। एक पति और पत्नी होते हैं जो सचमुच में ऐसे हैं। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से ऐसे ही रफली बातें करते हैं। अगर 30 साल पहले का समय होता तो यहां तक कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। आजकल के दिनों में जो भी है ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो ऐसे काम करते हैं। अब कृपया करके मुझे सुनिए। कोई मायने नहीं रखता कि कितने ज्यादा अच्छे आप अपने जीवन साथी के साथ हैं, क्योंकि आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं कि आप उसे कह सकते हैं, हनी कृपया करके वो मुझे दे दीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले प्रेम करते लेकिन सत्य यह है कि ऐसा नहीं है। ऐसा प्रेम जो कभी नहीं बदलता, वो सचमुच में हृदय के साथ आता है। हृदय से वो प्रेम आता है। आप अपने पति और पत्नी के साथ रहते हैं क्योंकि आप उनकी मदद नहीं कर सकते। आप अपने पति और पत्नी के साथ रहते हैं केवल अपने बच्चों के कारण। आप उसके साथ रहते हैं क्योंकि आप उसे तलाक नहीं दे सकते। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपका प्रेम कभी बदले नहीं। अगर आपका प्रेम कभी बदलेगा नहीं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो भी है। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा होता नहीं है और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। जिस तरह मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो सचमुच में अपने जीवन साथी का आदर करते हैं, वो परिवार जो आत्मा में अच्छा है, वो सचमुच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत से परिवार के सदस्य हैं आजकल इस कलीसिया में। ऐसा संभव है क्योंकि वो सत्य में बदल गए हैं। क्या आप ऐसा व्यवहार करेंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? यह अर्थहीन होगा। जो ऐसा व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप कोई गलती नहीं करेंगे जो भी मैंने कहा है। जब आप अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं अपने हृदय की गहराई से, आप अपने हृदय की गहराई से प्रेम के हाव भाव और प्रेम के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप एक सच्चा और सुंदर प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। आपके कार्य अलग हो जाएंगे और दूसरों का ध्यान रखने का तरीका वो आपका अलग हो जाएगा। आप यहाँ तक कि उन शब्दों को याद रखेंगे जो आपके पति ने आपको कहे, और यहाँ तक कि आप उन चीजों को याद रखेंगे जो आपके पत्नी ने कही। आप अपने पति की सेवा करेंगे उन चीजों को याद रखते हुए कि उनको क्या पसंद है। उसका कोई लाभ नहीं होगा अगर आप उन चीजों से सेवा करें जो उनको पसंद नहीं है। आपके पति को मछली पसंद नहीं है। आपके पति क्या कहेंगे जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं और खाने के समय उन्हें बस केवल टेबल पर मछली ही मिलती है? आपको उन चीजों को तभी बनाना चाहिए जब आपके पति उनको पसंद करें। अब आपके पति आपको क्या कहेंगे? वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। वो बस खा लेंगे क्योंकि वो आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहते। तब आप उनसे पूछेंगे कि उनको क्या पसंद है। वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनको ये पसंद नहीं है, और आप फिर भी मेज पर उन्हीं चीजों को रखते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या उनको पसंद है। ये बस केवल एक उदाहरण है। अच्छी तरीके से सेवा करने का मतलब दूसरों के हृदय को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करने। इसी तरीके से परमेश्वर के साथ भी है। आपको परमेश्वर की अच्छे से सेवा करनी है, इस चीज को जानते हुए कि किस चीज से परमेश्वर खुश होते हैं। आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते क्योंकि आप उनके हृदय के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आपको उनको अच्छे से जानना है और तब उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और उनकी सेवा करनी है। जब आप सबत के दिन को पवित्र रखते हैं तो आपको इस तरीके से पवित्र रखना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर की इच्छा हमसे यह थी कि हम अपने पूरे हृदय के साथ उनकी सेवा करें। वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो आशीषें आएंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का मालिक हमारा प्रभु है, क्योंकि वो ही केवल एक है जिन्होंने हमें मृत्यु से बचाया और हमें अनंत जीवन दिया। हमारा जीवन प्रभु से संबंधित है, और निश्चित तौर से हमारा समय, स्वास्थ्य और धन सब कुछ प्रभु से संबंधित है। जिस तरीके से आपने निर्णय लिया कि आप अपना संपूर्ण दशांश देंगे, तो आप क्यों अपना निर्णय नहीं लेते कि आप अपना धन, समय, स्वास्थ्य सब कुछ प्रभु को देंगे, कम से कम प्रभु के दिन पर? यह आपके लिए अच्छा होगा। यह केवल आप रविवार के दिन ही नहीं बल्कि सोमवार से शनिवार तक करें, लेकिन जो भी है मैं आशा करता हूं कि आप कम से कम रविवार के दिन ऐसा करेंगे। तब यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप सबत के दिन को पवित्र रखें। मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आपके पास ऐसा निर्णय होगा और आप अपना सब कुछ प्रभु को देंगे और आप बहुतायत से आशीषें पाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास रविवार की सुबह की सभा में समय होता है कि हम अपने बीते हुए सप्ताह पर नजर डालें और अपनी गलत की हुई चीजों के लिए पश्चाताप करें। कभी कभार आप अपने हृदय को नहीं रखते और कुछ असत्य की चीजों को करते हैं। जब हम इस संसार में 6 दिन के लिए जीते हैं, तो भी जब भी हम अपने पापों को अंगीकार करते परमेश्वर के सामने और पश्चाताप करते हैं, तो वो प्रभु के लहू के द्वारा आपके पापों को साफ करेंगे। तब वो आपको साबित करेंगे कि आपको उस दुष्टत्व शैतान से कोई संबंधित नहीं है जो संसार पर राज्य करता है, और स्वर्ग के नागरिक होने के नाते परमेश्वर की संतान के रूप में अलग करेंगे। वो प्रभु की बाहों में आपको सुरक्षा देंगे जो भी दुष्टत्व शैतान कार्य करता है उनसे। और रविवार की सुबह की सभा आशीर्वाद वचन के साथ समाप्त होती है। रविवार के दिन को पवित्र रखने और इस आशीर्वाद वचन के लेने के द्वारा आप सुरक्षा में और आशीषों में रह सकते हैं उस पूरे सप्ताह। इसी तरीके से सबत का दिन वह दिन है जिस दिन हम अपनी आत्मा में ताजा होते हैं और अगले सप्ताह के लिए तैयारी करते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हम में कुछ हद तक कमजोर है, हम इसे दोबारा से अपने मन में रख सकते हैं और इसके अनुसार जी सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, उनको स्तुति देना, हम अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं आत्मिक सामर्थ्य के साथ इस संसार को जीतने के लिए। अगर आप इस तरीके से प्रभु के दिन को पवित्र रखते हैं, तो धीरे धीरे करके आप परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को अपने आप में दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यशाया 56 अध्याय उसका 2 पद कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है। आपको प्रभु के दिन को पवित्र रखना है। परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं कि आपको रविवार के दिन कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं या आप अपनी दुकानों को खोलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रभु के दिन को पवित्र माना है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। होने पाए प्रभु के दिन को पवित्र रखने के द्वारा आप अपने मन और अपने हृदय को पवित्र करें और परमेश्वर की आशीषित संतान बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।